और सूत्र नंबर आएगा 86, यानी 86-87 ये सूत्र चलेंगे। आप व्यंजन संधि के प्रकरण में हैं। व्यंजन को व्यंजन के शब्दों के साथ में मिलाना ये व्यंजन संधि कहलाती। व्यंजन मतलब पकवान नहीं है, यहाँ व्यंजन से मतलब है शब्द। कुछ स्वर होते हैं और कुछ होते हैं व्यंजन। स्वर अ से लेकर औ तक, अह तक स्वर कहलाते हैं, और क से लेकर ह तक व्यंजन कहलाते हैं। स्वर संधि का प्रकरण बहुत ही डिटेल में पढ़ा और उसकी परीक्षा भी देकर आप लोगों ने बहुत अच्छा रिजल्ट प्रस्तुत किया है। और अब ये व्याकरण की क्लास जिसमें व्यंजन संधि पढ़ाई जा रही है, आपको पहले बता दूं 10 अप्रैल को आपकी परीक्षा होगी। और इसमें पूरा संधि प्रकरण जो 124 सूत्र तक है, यानी 60 सूत्र तक आपने परीक्षा दी है। अब उसके बाद 124 सूत्र तक विसर्ग संधि तक आपकी परीक्षा होने वाली है 10 अप्रैल तक। उससे पहले पहले हम कोर्स को पूरा करेंगे और 10 अप्रैल को परीक्षा होगी आपकी व्याकरण की, और 20 अप्रैल को अगली गोमट सार जीव कांड की परीक्षा होगी। उसकी डिटेल हम आपको कल बताएंगे गोमट सार की क्लास में। तो अब चलिएगा 85 नंबर सूत्र के बाद में, देखिए नीचे भवान प्लस लुनाती, ये स्लाइड देना, भवान प्लस लुनाती और भवान प्लस लिखती, ये शब्द हैं। अब इसको व्यंजन संधि क्यों कहते हैं? इधर भी भवान में ना व्यंजन है, आगे लुनाती में ला व्यंजन है, आगे भवान में ना व्यंजन है, लिखती में ला व्यंजन है। तो व्यंजन की व्यंजन शब्द के साथ में संधि करना ये व्यंजन संधि कहलाती है। अब इसमें सूत्र लगता है लेलम और उसके साथ एक और सूत्र पढ़ लीजिए अनुस्वारहीनम। ये सूत्र कहता है कि लकार के आने पर पदांत नकार को लकार हो जाता है। यानी ये लकार है, लकार माने ला शब्द आने पर पहले के शब्द में जो ना है इसको भी ला हो जाता है, तो इसको भी ला हो गया। फिर इसको क्या कहते हैं? और ये लकार अनुस्वारहीनम का क्या है? और ये लकार अनुस्वारहीन होता है, मतलब बिना अनुस्वार के होता है। क्योंकि ऊपर जो आपने पढ़ा था उसमें प्रशान चरति वगैरह में इसमें अनुस्वार सहित सा हुआ था, तो यहाँ पर अनुस्वार सहित ला नहीं हुआ, केवल ना को ला हुआ है और अनुस्वार नहीं है, इसलिए इसमें माँ का उच्चारण बिल्कुल नहीं होगा। तो भवान प्लस लुनाती, इस ना को ला होकर के आधा ला और भवान लुनाती बन गया। यहाँ बैठे हुए आप सब तो नए हो, लेकिन इतनी व्याकरण तो सबको प्राइमरी में पढ़ाई जाती है। तो भवान प्लस लुनाती भवान लुनाती हो गया, ऐसे ही भवान प्लस लिखती, ये भी लेलम सूत्र से ना को ल हो गया और अनुस्वार कोई नहीं है, तो भवान लिखती आप लिखते हैं, ये हो गया भवान माने होता है आप। अब आगे भवान प्लस जयती, भवान प्लस झसयती, भवान प्लस यकारेण और भवान प्लस शेते, आगे सूत्र लगता है
ज झ य शकारेषु यकारम।
ये सूत्र कहता है कि ज झ य और श के आने पर पदांत नकार को यकार हो जाता है, माने कि उस वर्ग का अंतिम अक्षर हो जाता है। तो भवान प्लस जयति है, तो ज का अंतिम अक्षर है य, तो इसको क्या हुआ? ना को य हो गया, तो भवान जयति, इसमें उच्चारण तो ना का होगा लेकिन इसको हुआ है इस चवर्ग का अंतिम अक्षर य हो गया, तो इससे इसका उच्चारण कैसे बनेगा? भवान जयति। ऐसे ही झा के आने पर भी ना को य हो गया, तो भवान झसयति ऐसे हो गया। और इसी प्रकार से आगे का जो भवान नकारेण है, भवान यकारेण, भवान शेते, तो इसको भी भवाय शेते और भवाय यकारेण ऐसा संधि हो गई है। और इस प्रकार से व्यंजन की व्यंजन के साथ संधि को मिलाने को व्यंजन संधि कहते हैं। और इसमें बहुत अच्छा ये है कि एक एक नियम को बताने वाला एक एक अलग सूत्र आ जाता है, इसलिए ज झ य और श के आने पर ना को य हुआ है, ये बात इसके अंदर संधि के साथ बताई। भवान जयति, भवान झषयति, भवान यकारेण और भवान शेते। अब आगे का प्रकरण आपको आगे बताएंगे।